एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं।
गुनाह की राह पर फिर से कभी जाया ना करो। अंधेरों भी तुम यकीन लाया न करो गुनाह की
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर फिर से आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं पिता, हम अपने शिष्य को झुकाते हैं तेरे सामने और तुझसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू हमारा सृष्टिकर्ता है, तू हमारा परमेश्वर है। पिता हमारे मनों को खोल दे, हमारे आत्माओं को खोल दे कि हम तेरे वचन को समझ सके। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वे तेरे वचन को समझ सके और तेरे राह में चलने सके। इसके लिए हम सबों को तेरा आत्मा का आशीष दे, विशेषकर मेरे संग पिता तेरा आत्मा का सामर्थ्य दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ्य के द्वारा तेरे लोगों को बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है वह पवित्र जन। यशया नबी एक दर्शन पाया, उसमें वह परमेश्वर के सिंहासन में, स्वर्ग के सिंहासन में परमेश्वर को बैठे हुए देखता है और उसके चारों ओर स्वर्गदूत लोगों को पुकारते हुए वह सुनता है। और देखिए वे लोग क्या कह रहे थे, यह लिखा है यशया 6:3 में, मैं इसे पढ़ता हूं। और वे एक दूसरे से पुकार कर कहने लगे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर है। ब्रह्मांड का प्रभु अपनी पूर्णता शक्ति और महिमा के कारण सबसे अलग है, अर्थात पवित्र बाकी सबसे ऊपर। वह जिस किसी भी चीज में निवास करता है वह पवित्र हो जाती है, जिसमें मानव हृदय भी शामिल है। कुछ बाइबल विद्वानों का मानना है कि यशया 6:3 पद में पवित्र शब्द की 3 बार पुनरावृत्ति ईश्वरत्व के 3 व्यक्तियों का संकेत देती है। चाहे जो भी हो, किसी विशेषता की 3 बार पुनरावृत्ति का अर्थ जो देना ही होगा। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर की पवित्रता का क्या अर्थ है। ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा गुण है जो उसे अन्य सभी देवताओं से अलग करता है। यह एक उच्च नैतिक पूर्णता का प्रतीक है जो उसे अन्य सभी से अलग करती है। तीनों व्यक्तियों को पवित्र कहा जाता है, पिता यूहन्ना 17:11, पुत्र प्रेरितों के काम 4:30 में, और निश्चित रूप से पवित्र आत्मा को। परमेश्वर के पास ऐसे गुण हैं जो अवर्णनीय हैं, जो उसके ईश्वरत्व का हिस्सा हैं, जैसे स्वर्गीयता और अमरता। लेकिन पवित्रता एक ऐसा गुण है जिसे वह न केवल संप्रेषित करता है बल्कि संप्रेषित करना चाहता है। इस प्रकार उसके लोगों को पवित्र लोग होना चाहिए। पवित्रता वह है जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है, ताकि वह हमें अपने राज्य में ले जा सके। जैसा कि हम पढ़ते हैं 2 पत्रस 3:14 में, यह एक अनुग्रह है जो केवल मसीह के माध्यम से संभव है, जिसने कहा कि उसने खुद को पवित्र किया ताकि हम पवित्र हो सके। यह हम पढ़ते हैं यूहन्ना 17:19 में। हम कितने अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक पवित्र परमेश्वर जिसकी हमें पवित्रता की सुंदरता में आराधना करने का विशेष अधिकार है, जैसे कि भजनकार भजन 29:2 में लिखते हैं। आइए हम इस पवित्र परमेश्वर के विषय में और अधिक जानें। इसके बारे में चलिए हम और अधिक पढ़ें। निर्गमन 15:11 में मूसा नबी ने इस तरह लिखा है, वह कहता है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। निर्गमन 15:11 एक विजय गीत का हिस्सा है जिसे मूसा और इसराइली लोगों ने लाल सागर पार करने के बाद गाया और मिस्र की सेनाओं के विनाश को देखा। मिस्र में रहते हुए उन्होंने कई देवताओं को देखा था। उन्होंने इन देवताओं को उन विपत्तियों से शर्मिंदा होते देखा जो इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि मिस्रियों ने परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं दिया था। लेकिन अब उन्होंने देखा था कि परमेश्वर अपने लोगों की ओर से कैसे काम कर रहा है। उन्होंने देखा कि परमेश्वर उनके लिए कैसे काम कर सकता है। उसने न केवल चमत्कार किए बल्कि वह पवित्रता में महिमावान था। इसका क्या मतलब है? मुख्य विचार अलगाव प्रतीत होता है और जैसा कि परमेश्वर पर लागू होता है, इसका मतलब है कि वह अपने बनाए गए कार्यों से परे हैं, सृष्टि किए हुए जंतुओं से अलग है। वह सर्वोच्च देवता है जिसके बराबर कोई नहीं हो सकता। किसी अन्य की पूजा करना कमतर की पूजा करना है, यह पाप है। पवित्रता में एक नैतिक गुण भी होता है और यह सुझाव देता है कि परमेश्वर नैतिक रूप से उत्कृष्ट है। निर्गमन 3:5 में यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि मूसा जब एक झाड़ी में देखा कि आग जल रहा है लेकिन झाड़ी नहीं जल रहा है, वहां उसके नजदीक गया, वहां पर परमेश्वर से भेंट करता है और परमेश्वर से कहता है, अपने पैर से अपना जूता उतारो। और मूसा अपने पैर से जूता उतार लेता है क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिस स्थान में वो खड़ा है वह पवित्र स्थान है। परमेश्वर वहां पर था, परमेश्वर की उपस्थिति उसे पवित्र बना रहा था। मूसा ने जो परंपरा अपनाई थी वह आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में पुरुष अपनी टोपी उतारकर और महिलाएं अपना सिर ढककर श्रद्धा प्रकट करती हैं। कोई खास परंपरा महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि श्रद्धा का तथ्य महत्वपूर्ण है। इसराइली लोगों को सिनै पर्वत पर श्रद्धा, बहुत ही श्रद्धा दिखाने के लिए कहा गया था। जब परमेश्वर सिनै पर्वत पर उतरने वाला था, उनके बीच आने वाला था, उनसे बात करने वाला था। इसे हम निर्गमन 19:20 में पढ़ सकते हैं और उसके बाद के अध्यायों में भी देख सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति भयावह हो सकती है, जैसे कि हम निर्गमन 19:18 में पाते हैं। सारी प्रकृति उसकी उपस्थिति से कांप उठती है। पापी मनुष्यों को पवित्र भय के साथ उसकी उपस्थिति में कितना अधिक प्रवेश करना चाहिए। पवित्र स्थान को अपने लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक होना था। निर्गमन 29 का 42 और 43 में हम पढ़ते हैं, इसे एक पवित्र स्थान होना था। पुजारियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र पवित्र थे, सभी बर्तन पवित्र थे जो पवित्र स्थान के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। वेदी परम पवित्र थी। निर्गमन 40 का 9 और 10 पद में पढ़ते हैं, जहां कहीं भी परमेश्वर है और जो कुछ भी प्रभु को समर्पित है वह पवित्र है। उसी तरह मंदिर पवित्र था। भजन संहिता 65 का 4, नया यरूशलेम पवित्र शहर है। प्रकाशित वाक्य 21 का 4, और सारा स्वर्ग पवित्र है। भजन संहिता 20 का 6, बाइबल यह स्पष्ट करती है कि पवित्र और सामान्य के बीच अंतर है। हम उन अंतरों को अनदेखा करके खुद को बहुत जोखिम में डाल सकते हैं। विनम्रता और श्रद्धा उन सभी के आचरण की विशेषता होनी चाहिए जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। विनम्र विश्वासी आत्मा के लिए पृथ्वी पर परमेश्वर का घर स्वर्ग का द्वार है। पौलुस प्रेरित ने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय 3 विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया है, रोमियो 7 का 12 में। यहाँ लिखा है, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। निर्गमन 20 अध्याय में हम परमेश्वर के पवित्रता के विषय देख रहे थे और सीख रहे थे। हम आमतौर पर परमेश्वर के नियम को नापसंद करते हैं, रोमियो 8 के 7, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पतित स्वभाव के विरुद्ध जाता है वह हमें अप्रिय लगता है। हम जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन अगर हम जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के नियमों के साथ सामंजस्य में रहना सीखना चाहिए, जैसे कि हम पाते हैं याकूब 1 का 25 और 2 का 12 में। प्यारो, केवल सामंजस्य के नियमों का पालन करने के कारण ही एक संगीतकार अच्छा संगीत बना सकता है। केवल खेल के नियमों का पालन करके ही एक खिलाड़ी खेल सकता है और जीत सकता है। बिना नियम के केवल अराजकता और निराशा हो सकती है। यीशु ने मत्ती 22 का 37 से 40 में परमेश्वर के पवित्र नियम का सारांश दिया। अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखो, यही पहली और बड़ी आज्ञा है और दूसरी भी उसके समान है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता इन्हीं दो आज्ञाओं पर टिके हैं। मत्ती 5 के 17 और 18 में यीशु ने व्यवस्था के बारे में और अधिक कहे हैं। कहता है, यदि व्यवस्था को बदला जा सकता तो मनुष्य मसीह के बलिदान के बिना भी बच सकता था। यह तथ्य कि मसीह ने मनुष्य के अपराध की सजा भुगती समस्त सृजित बुद्धि के लिए एक शक्तिशाली तर्क है कि व्यवस्था अपरिवर्तनीय है, कि परमेश्वर धर्मी दयालु और आत्मत्यागी है, और कि उसकी सरकार के प्रशासन में असीम न्याय और दया का एक साथ मिलन है। पैट्रियार्क्स एंड प्रोफेट्स पुस्तक की पृष्ठ 70 में हम यह बात पाते हैं। जो लोग परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं वे धन्य कहे जाते हैं। इसे हम पाते हैं भजन संहिता 119 के 1 पद में। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति 2 का 3 में परमेश्वर ने एक पवित्र दिन ठहराया है। साप्ताहिक चक्र का प्रकृति की किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है, जैसे दिन, महीना या वर्ष। इसकी उत्पत्ति एक पवित्र ईश्वर से हुई है जिसने 6 दिनों में दुनिया का निर्माण किया और 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर द्वारा इसे पवित्र बनाया या पवित्र किया गया, इसे पवित्र उपयोग के लिए अलग किया गया। पवित्र ईश्वर के साथ एक पवित्र संवाद करने के लिए बनाया गया और ठहराया गया था। यहूदी धर्मशास्त्री अब्राहम होसेल के अनुसार समय पर ईश्वर की उपस्थिति उसे पवित्र बनाती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी स्थान पर उसकी उपस्थिति उसे पवित्र बनाती है। यह महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति किस दिन को शब्द के रूप में मानता है, क्योंकि ईश्वर खुद को एक विशेष तरीके से यानी शब्द के घंटों में रखता है। वह रुकता है और सूर्यास्त से सूर्यास्त के बीच के समय को अपनी उपस्थिति की गुणवत्ता से भर देता है, जो सप्ताह के दौरान किसी अन्य समय अवधि में नहीं पाई जाती है। सातवां दिन वह दिन है जिसे ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संवाद के लिए एक विशेष दिन के रूप में अलग रखा है, जैसा कि हम उत्पत्ति 2:3 में पाते हैं। यीशु ने मरकुस 2:27-28 में बताया है कि वह सबत के प्रभु हैं। यीशु ने बताया कि यह दिन लोगों को परमेश्वर के साथ संगति में लाने के लिए बनाया गया था। यीशु ने दिखाया कि पाप या बीमारी से मुक्ति दिलाना सबत के उद्देश्य के अनुरूप है। हम देखते हैं बाइबल में प्यारों कि सबत दो चीज का स्मरण कराता है। पहला है कि वह सृष्टि का स्मरण कराता है, कहता है कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है और हम उसके सृजे हुए जन हैं। और दूसरा है कि परमेश्वर हमारा छुटकारा दिलाने वाला है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करने वाला है। जैसे कि उन्होंने इसराइली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया, वैसे ही परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा पाप से उद्धार करता है। यह तथ्य कि व्यवस्था विवरण शब्द के पालन के लिए एक और कारण बताता है, इस तथ्य को नकारना नहीं है कि शब्द सृष्टि की स्मृति है। यह बताता है कि शब्द के पालन के लिए अन्य कारण भी हो सकते हैं, ऐसे कारण जो हमारे पाप से मुक्ति से संबंधित हैं। व्यवस्था विवरण 5:15 में हम पाते हैं कि परमेश्वर शब्द को छुटकारे का चिन्ह भी देता है। आइए हम 2 तिमोथियस 1:8-9 में देखें। यहाँ पर हम पाते हैं एक पवित्र बुलाहट के बारे में। यहाँ हम पढ़ते हैं 8 पद में, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसकी कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं प्यारों कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है इस पवित्र बुलाहट में हमारे कामों के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार और परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार। हमारे लिए क्या ही सौभाग्य है, परमेश्वर का यह बहुत बड़ा अनुग्रह हमारे प्रति है। हमें उसके प्रति बहुत ही अधिक धन्यवादी होना चाहिए। प्रेरित पौलुस उन मसीहों को संत कहता है जिन्हें वह लिखता है, रोमियो 1:7 में और 1 कुरिन्थियों 1:2 में तथा इफिसियों 1:1 हम देख सकते हैं। संत शब्द आज मसीहों के लिए एक लोकप्रिय शब्द नहीं है। इसका उपयोग चर्च के उन उत्कृष्ट सदस्यों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिन्हें आधिकारिक रूप से संत घोषित किया गया है, और इस प्रकार इसे सभी पर लागू नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि अंग्रेजी में नए नियम के कुछ आधुनिक संस्करण इस शब्द का उपयोग करने से बचते हैं। संत शब्द का अनुवाद उसके समर्पित लोग, उसके अपने लोग हैं, जैसा कि हम रोमियो 1:7 में पाते हैं, और परमेश्वर के पवित्र लोग हैं 1 कुरिन्थियों 1:2 में हम इसे पाते हैं। पौलुस ने ऐसा जीवन जिया जिसका अनुकरण करने पर हमें गर्व हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है प्यारों कि उसने पहचाना कि वह अपने आप में कुछ भी नहीं था। यह हम पढ़ते हैं गलातियों 2:20 में। वह केवल क्रूस पर ही गौरव कर सकता था क्योंकि वह उस उद्धार का प्रतीक था जो उसके लिए खरीदा गया था। यही कारण था कि वह बन सका जो वह था। गलतियों 6:14 कहता है, पौलुस ने महसूस किया कि उसकी पर्याप्तता स्वयं में नहीं थी बल्कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में थी, जिसके अनुग्रहपूर्ण प्रभाव ने उसके हृदय को भर दिया, जिससे हर विचार मसीह के अधीन हो गया। प्रेरितों के काम पृष्ठ 251 में हम यह बात पढ़ते हैं। यूहन्ना 17:19 में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पवित्र किया कि उसके शिष्य उसके समान पवित्र हों। अपने पिता से प्रार्थना करते हुए यीशु ने कहा कि उसने खुद को पवित्र किया या खुद को समर्पित किया ताकि उसके शिष्य पवित्र और समर्पित हो सके। यह पूर्ण प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। एक पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों के होने के उद्देश्य के लिए समर्पित है। क्या हम में समर्पण की प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए इससे अधिक आकर्षण कुछ हो सकता है? पवित्रता स्वर्गारोहण नहीं है, यह परमेश्वर के प्रति इच्छा का संपूर्ण समर्पण है। यह परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन के अनुसार जीना है। यह हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना है। यह परीक्षण में, अंधकार में और साथ ही प्रकाश में परमेश्वर पर भरोसा करना है। यह दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलना है। यह निर्वादत विश्वास के साथ परमेश्वर पर निर्भर रहना है और उसके प्रेम में विश्राम करना है। कहता है प्रेरितों के कार्य पृष्ठ 51 में, प्यारो पवित्र परमेश्वर के लिए मसीह की तरह मानव स्वभाव धारण करना स्वाभाविक नहीं था। हमारे लिए ईश्वरीय स्वभाव का हिस्सा बनना स्वाभाविक नहीं है, चाहे हम कुछ भी हो, लेकिन पापी दुनिया के उद्धार के लिए परमेश्वर को यह कदम उठाना जरूरी था। आपके अपने व्यक्तिगत उद्धार के लिए जरूरी है कि आप अपना कदम उठाएं। क्या आप आज सभी बाधाओं को दूर करने का चुनाव करेंगे और मसीह की शक्ति और अनुग्रह को आपको पवित्रता की ओर ले जाने देंगे? यदि आप यह चुनाव करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपको पड़े, परमेश्वर आशीष आपको मिले, पवित्र आत्मा हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास फिर से आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए और हमें जीवित रखने के लिए। तुझे धन्यवाद देते हैं तेरा अनुग्रह के लिए, तू हमसे प्रेम किया और हमें बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम पवित्र हो सकते हैं, तेरे उपस्थिति में रह सकते हैं। तू हमें बुलाता है पिता, इस पुकार को हम स्वीकार करें और तेरे पास आ सके। हम सबको तू आशीषित कर, विशेषकर मैं श्रोताओं को तू आशीष दे। इस विनती को मैं तेरे यीशु के नाम से
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@advent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।